نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير نماز نبوی الحمد للہ ہماری یہ سیریز اپنی خیر اور اپنی افادیت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نمازوں کی بہتری کا ذریعہ بن رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آج کے اس سیشن سے خاص طور پہ نماز جنازہ اور اس کے متعلقات کو سمجھنے اور سیکھنے والا بنائے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نبی کے امتی ہیں کہ جہاں واقعی جینے میں بھی اور جانے میں بھی ایک عبرت ہے اور ہمیں اللہ نے ہر طریقہ سکھا دیا خدا نخواستہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے تجہیز و تکفین تجہیز کیا ہے اس کا اگر آپ تے ہٹا دیں تو باقی آپ کو پتا ہے جہیز یہ کیا ہو گیا جہیز کے ساتھ تو خوشی کا تصور آتا ہے ہمارے کلچر میں نہیں ماں باپ کے لیے نہیں آتا جو بیچارے قرضے لے لے کر اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں یا ان ماں باپ پہ نہیں آتا جن کی بیٹیاں کوئی لیتا ہی نہیں کہ جہیز دو گے تو آئیں گے یہ تو جن کے پاس ہے وہ آج کل اتنی کیئر ہی نہیں کرتے یہ ان غریبوں کے گلے کی بھانس بنی ہوئی ہے جن کی چار چار بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آتے نہیں ہیں وہی لفظ جہیز کو تجہیز کہہ لیجئے کہ جیسے دلہن کو جہیز دے کے رخصت کرتے ہیں نا لوگ اصل میں یہ لفظ جنازے کے لیے آتا ہے میت کو دنیا سے رخصت کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کفن ہے اس میں کچھ بیری کے پتے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں میت گاڑی وغیرہ اس کو تجہیز کہتے ہیں یعنی میت کو بڑی عزت کے ساتھ زمین کے سپرد کرنا اور تکفین کفن سے یعنی تجہیز و تکفین کو جمع کیجئے تو مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے بیسیکلی اب ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا بیماری کا دعا کیجئے کہ ہر بیمار کو اللہ صحت دے یا ایک دو باتیں اپنے سمجھ کے لیے کر لیتے ہیں کوئی بندہ بیماری سے نہیں مرتا بیماری آتی ہے موت بیماری سے نہیں آتی ورنہ رات کو بستر پہ سونے والے صبح کبھی نہیں اٹھتے وہ کیوں مرتے نہیں اور آج بھی بستروں پہ کئی کئی سال سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں لوگ نہیں مرتے بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے ٹھیک ہے بیماری کسی سے دوسرے کو تب لگتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم گناہ ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں ہم بہت ساری غلط چیزیں بھی لے پاتے ہیں لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ان صلاتی و نسخی و ماحیا و مماتی کی طرح ہمیں جینے کے طریقے بھی سکھاتا ہے اور جانے کے تو اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس بک میں سے پڑھیں گے کہ عالم نظام میں کسی کو دیکھ لیں یعنی ڈیتھ ویٹ پہ ہے کوئی کسی کو موت کی ہچکی لگی ہوئی ہے ایک دم اچانک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص دنیا سے جانے لگا ہے تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی یہ دعا کے ساتھ پڑھیں گے کہ جب ہمارا وقت آئے ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو اس وقت ہمارے ارد گرد والوں کو یہ باتیں آتی ہوں تو اپنے بچوں کو سکھانے کا یہ ٹاپک ہے اپنے شوہروں کو اپنے بیٹوں کو اپنی دوستوں کو یہ سب سنوائیے اور نصیحت کیجئے کہ اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تو تم نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں عالم نظام تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو یہ روایت بڑی معروف ہے صحیح مسلم میں 916-917 یعنی ان کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اسے سن کر وہ بھی پڑھیں اچھا یہاں اب یہ بات غور سے سننے کی ہے بعض لوگ جو بیمار ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو اس کو نہیں کہنا چاہیے آپ کو کیا پتا بیماری کی وجہ سے وہ انکار کرتے تکلیف ہے زبان بند ہو گئی آپ خود پڑھیے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پڑھتا دیکھ کر اس کی بھی زبان پہ اللہ جاری کر دے گا تو جو حکم کیا ہے تلقین کرو یہ نہیں کہا کہ اس کو حکم کرو ٹھیک ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ روایت ابو داؤد کی ہے 3116 اور اسی طرح امام حاکم اور زاہبی کی مستدرک میں 351 اور 500 پہ ہے صحیح روایت ہے تو کیا پتہ چلا کہ جب بھی کسی کا آخری وقت ہو تو اس وقت کیا ہوگا لا الہ الا اللہ خود بھی پڑھیں گے اور اگلے کو بھی اسی کی دعوت دیں گے کہ وہ پڑھے اگر کوئی خود سے نہیں پڑھتا تو آپ تنگ نہ کیجیے اس کو بس آپ پڑھتے رہیے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ اس نے آثار موت دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن چند ہی لمحوں بعد اللہ کی قضا آ گئی اور لا الہ الا اللہ اس کی زندگی کا آخری کلام بن گیا अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। आपने फरमाया, जब तुम किसी बीमार या मैयत के पास जाओ तो भलाई की बात कहो, क्योंकि इस वक्त तुम वो जो कुछ कहते हो फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। जी, ये रिवायत है सही मुस्लिम में 919। थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, जीना मरना सबके साथ है। जब भी किसी के घर जाएं जहां कोई मौत हुई, जब कोई फौत होता है, तो 3 दिन तक वो जगह दुआओं की कबूलियत की जगह बन जाती है। अच्छी बातें कीजिए, दुआएं मांगिए, अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, दुनिया से जाने वाले के लिए मांगे, क्योंकि फरिश्ते आमीन कहेंगे। तो जिस दुआ पे फरिश्ते आमीन कह देंगे, आप बताइए कि अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे ना। और ये सही मुस्लिम की रिवायत आप जाकर देख सकते हैं 919 से। तो इसे क्या पता चलता है कि दुआएं मांगी। अमूमन हम ऐसे घर में जाकर बातें करते हैं, क्या हुआ था, किसने किया, फिर उसके बाद, और ज्यादा बातें पूछते भी हम घर वाले से हैं। वो पहले ही बेचारा दुखी, पहले गम, सदमा, अचानक चीजें, ऊपर से सबको सुनाना पसंदीदा अदब नहीं है। ये बातें आपको बाद में खुद ही पता लग जाएंगी, तजस्सुस नहीं। थोड़ी देर बैठे, थोड़ी सी बात की, उठकर चले गए, क्योंकि मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए बेहतरीन नसीहत का जरिया होता है। ठीक है, ये नहीं कहना मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, फरिश्ता आमीन कह देगा। तो अल्लाह ताला हमें अपनी जुबान को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक दे। फिर इसी तरह मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ने वाली रिवायत, जो अबू दाऊद की रिवायत 3121 है, इसको इमाम नववी ने ज़ईफ़ कहा है। और दारकुतनी फरमाते हैं कि इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सही साबित नहीं है। रिवायत है अल तलखीस अल खबीर जिल 2 पेज 104। तो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो सूरह यासीन पढ़ना शुरू करते हैं, ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। आप कुछ भी कीजिए अपनी मर्जी से, लेकिन हदीस में ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, मौत की आरजू करने की ममानियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की आरजू ना करो, अगर तुम नेक हो तो ज्यादा नेकी कर सकोगे, लंबी उम्र मिलेगी तो नेकियां होंगी। यानी देखिए ना, हमारी जिंदगी में जितनी लंबी उम्र है उतनी नेकियों के मौके ज्यादा है। ये अलग बात है कि कुछ लोग जितनी मर्जी लंबी उम्र मिल जाए उनको नेकी पे नोई कहना है। मैं अक्सर सोचती हूँ, हर दिन सुबह क्यों होती है? हम सबको ये एहसास दिलाने के लिए होती है कि अभी वक्त है, कुछ कर लो, अभी वक्त है, कुछ कर लो। हर सूरज हमें इस बात का पैगाम देता है कि अल्लाह तुमसे मायूस नहीं है। कल का गुनाह छोड़ के आज तौबा कर लो, कल नेकी नहीं की आज कर लो, कल तक अपनी मर्जी कर रहे थे अब अल्लाह की मर्जी कर लो। इस तरीके से अपने एक एक दिन का सही इस्तेमाल करना, ये है अच्छी बात। क्या पता कि कब आंख बंद हो जाए, नेकी करते हुए जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद तो रखेंगे ना कि बेहतर काम करें। फिर सर आपने फरमाया, मौत की आमद से पहले इसकी आरजू करो, ना मौत की दुआ मांगो, क्योंकि जब कोई शख्स मर जाता है तो इसकी नेकी करने की उम्मीद खत्म हो जाती है, और मोमिन की लंबी उम्र इसे नेकियों ही में आगे बढ़ाती है। ये रिवायत भी आपके सामने है, मुस्लिम 2682। क्या पता चला कि लंबी उम्र को गनीमत जानो और आरजू ना कीजिए। कोई ये नहीं कह सकता अल्लाह मुझे मौत दे दे। क्यों भाई, आपने कितनी को नेकियां जमा कर ली हैं? कोई आपकी जेब में बोर्डिंग पास आ गया जन्नत का? आपको जवाब में ऊपर से आसमान से आ गया कि तुम कुछ भी करो तुम जन्नती हो? हमें तो कांपना चाहिए कि अल्लाह, ये ईमानी हालत, ये अमली हालत, इस पे मैं मर गई तो मेरा बनेगा क्या? तो हमेशा अपने लिए उम्र मांगी, बच्चों के लिए, कभी किसी के लिए ये ना कि अल्लाह इसको मौत दे। बस अब बीमारी, दर्द, तकलीफ कुछ भी आती ना, उसकी वजह से लोग ये दुआएं मांगनी शुरू हो जाते हैं, हाय अल्लाह आप मुझे उठा ले। नहीं, कभी ना मांगिए, सब्र मांगिए, हौसला मांगिए और अजर की उम्मीद रखिए। अब अगली रिवायत जो बहुत ही खूबसूरत है, आपने फरमाया, मौत की आमद से पहले इसकी आरजू करो, ना मौत की दुआ मांगो, क्योंकि जब कोई शख्स मर जाता है तो इसकी नेकी की उम्मीद खत्म, और मोमिन की लंबी उम्र इसे नेकियों में आगे बढ़ाती है। अब ये हदीस तो थी ना, लेकिन अब जरा अगली रिवायत देखिए। इब्ने उमर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़कर फरमाया, यानी ऐसे। ये भी एक अच्छा अंदाज होता है किसी को कॉन्शियस करने का और उसको केयरफुल करने का। दुनिया में इस तरह रहो गोया कि तुम मुसाफिर बल्कि राही हो। हजरत इब्ने उमर फरमाया करते थे, जब शाम हो तो सुबह का इंतजार ना करना, जब सुबह हो तो शाम का इंतजार ना करना, तंदरुस्ती को बीमारी और जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। ये रिवायत है जी बुखारी की 6416। 3 सेकंड जरा से इस पे गौर कीजिए। आप और मैं अपने ऊपर देखें कि एक तनिम खमसन कबला खम्स पे अमल है। पता नहीं कल सुबह होनी है कि नहीं, अभी से नमाज शुरू कीजिए, अभी से तौबा कीजिए, अभी से किसी का हक देना है तो दीजिए, अभी से किसी से माफी मांगनी है तो मांग ले, सॉरी कहने तो कह लीजिए, किसी किसी का दिल दुखाया तो उसका दिल खुश कर दीजिए। कल किसने देखी, कितने ही ऐसे लोग हैं जो रात को बिस्तर पे सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं है। ये बिस्तर आखिरी बिस्तर बन जाए और लोग अपने कंधों पे उठाएं, तो लिहाजा अभी अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर आप देखिए सुबह होगी तो शाम का इंतजार नहीं, हम पेंडिंग करते हैं, करूंगी ना अभी नहीं, अच्छा जरा हज कर लूं, अच्छा बच्चों की शादियां कर लूं, अच्छा ये हो जाए फिर मैं बहुत नेक होंगी, नेवर डू दिस। ये तो हर दिन उम्मीद की डोरी है, बंधी हुई है, कोई पता नहीं किस दिन खत्म हो जाएगी। आज तंदुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पता कल का दिन क्या सूरज लेकर आए। आज जिंदगी है, कल हमारा क्या नाम हो। तो जिंदगी में नेकियों के काम कीजिए, सदके जारिया बने। आपने मैंने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, आपका मेरा काम क्या है कि इस दुनिया में मुसाफिर बन के रहे। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब नो आबिर इस सबील, राह चलते अपनी नेकियां जमा कर रहे हैं। हम तो बस वो खाली थैला लेकर फिर रहे हैं कि उसमें जो नेकी डल जाए बेहतर है, कोई हिस्सा डल जाए, कोई हमारा सदका जारिया बन जाए। आज खत्म तो कल गए, फिर वो नेकियां रह जाएंगी तो रह जाएंगी, हम मजीद नेकियां नहीं कर सकेंगे। तो जिंदगी की इस मोहलत को गनीमत जानिए, ये नेकी के मौके, हर अजान, हर नेकी की दावत, हर कॉल हमारे हक में या हमारे खिलाफ हुज्जत है। और अल्लाह ताला में इन नेकियों की तौफीक दे करने की और इसको फिर संभालने की भी तौफीक दे। फिर आगे देखिए कि कोई बीमारी बहुत बढ़ गई तो क्या खुदकुशी कर सकता है? नहीं, खुदकुशी यानी सुसाइड, इस्लाम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करता, ये सख्त गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने आप को गला घोंट कर मारता है वो जहन्नुम में अपना गला घोंटता रहेगा। यानी जो मौत की तकलीफ एक बार होती है और इतनी सख्त तकलीफ है वो उसको जहन्नुम में भी हर वक्त होती रहेगी, क्योंकि कहते हैं मौत की सख्ती बाकी सख्तियों से भी बड़ी है। और जो शख्स नेजा चुभोकर अपनी जान देता है वो जहन्नुम में अपने आप को नेजा चुभोता रहेगा। रिवायत लीजिए मुझसे, बुखारी की रिवायत 1365, जाकर आप खुद भी पढ़िए। तो खुदकुशी नहीं करनी। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक ऐसे ही शख्स के मुतल्लिक फरमाया, मेरे बंदे ने अपनी जान खुद ली इसलिए मैंने इस पर जन्नत हराम कर दी। नोट कीजिएगा, रिवायत है ये बुखारी की 1364 और मुस्लिम 978। देखिए ना, अल्लाह ने जिस्म दिया ना मुझे आपको, तो मैं अपनी मर्जी से वापस कैसे लूं? जिसकी अमानत है उसके हाथ में देनी चाहिए वैसे भी। तो जिस्म अल्लाह की अमानत है, आप मैं इसको नहीं काट सकते। आप इसके साथ देखिए कि अपने आप को अजियत देना, कट्स लगाना और ड्रग्स में जाना, शराब के नशे में जाकर हर वो काम करना, इवन सिगरेट नोशी, ऐसी चीज जिससे आप खुद को किल कर रहे हैं, वो आप अपनी ना कदरी कर रहे हैं। कि वला तुल्कु बिअयदी को मिला तहलु का, अपने आप को हलाकत में ना डालो, अल्लाह का ये वाज़े हुक्म है। इसी तरह सही मुस्लिम की इस रिवायत में नबी सल्लम ने खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, इसलिए अहले इल्म इनकी नमाज जनाजा में शरीक ना हो, बल्कि बाकी लोगों को इबरत हासिल हो। यानी खुदकुशी करने वाले का जनाजा किसी इल्म वाले को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देखिए ना कि काफिर का जनाजा बंदा नहीं पढ़ाता, तो खुदकुशी करने वाला भी तो एक किस्म का नाशुक्र है, यानी उसने अल्लाह की नेमत की कदर नहीं की। और ये इसलिए भी है कि बाद वाले ऐसे काम से बाज आ जाए, वल्लाहु आलम। मैयत को बोसा देना जायज है, डेड बॉडी प्यारे ही होते हैं ना अपने, पहले इंसान कैसे झूलता है, लेकिन आप देखिए सिर्फ लफ्ज डेड बॉडी आ जाए बंदा उसके पास जाते हुए डरता है, खौफ खाता है। हालांकि मैयत को चूमा जा सकता है, महरम रिश्ते हैं, बेटी है, पोती है, बाप है, माँ है, यानी एक दूसरे को कैसे, आइए हदीस सुनिए। जिस शख्स का कोई करीबी दोस्त या अजीज फौत हो जाए तो इसका मैयत को फरते मोहब्बत से बोसा देना जायज़ है, यानी किस विद लव, ये मुराद है इंग्लिश में, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर आपको बोसा दिया था। ये अमल तो आज सीरत की किताबों में महफूज हो चुका कि दोस्त थे, साथी थे, सारी जिंदगी के साथी थे, तो अल्लाह के नबी के माथे पे बोसा दिया था अबू बकर सिद्दीक ने, ये उनको एक शान मिली। रिवायत ये बुखारी की है, 1241 और 1242 है। तो बहरहाल इस तरह किया जाए, लेकिन गैर महरम को तो ऑफकोर्स, न औरत मर्द को ना मर्द औरत को। मैयत का गुसल, आइए जरा गुसल का तरीका पढ़ते हैं, और इस सोच से पढ़िए कि सीखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, अपना भी और दूसरों का भी गुसल मस्तून तरीके से होगा। हजरत उम्मे अतिया बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को नहला रहे थे। आपकी कितनी बेटियां आपकी जिंदगी में चली गईं? राहबरे कामिल में हम पढ़ चुके हैं, तीन बेटियां टोटल, चार थीं, सिर्फ फातिमा बाद तक जिंदा रही, बाकी तीन बेटियां आपकी जिंदगी में वफात पा गईं। तो आपने क्या फरमाया, तीन, पांच या सात बार पानी और बेरी के पत्तों से गुसल दो, और आखिरी बार पानी में कुछ काफूर भी मिला लो, और एक रिवायत में कि गुसल दाएं अज़ा से शुरू करो, अज़ाए वुजू, यानी राइट हैंड से जैसे वुजू शुरू करते हैं इसी तरह गुसल शुरू होगा। उम्मे अतिया कहती हैं कि हमने गुसल के बाद इसके बालों की 3 चुटियां गूंद दी और इन्हें पीछे डाल दिए। 3 चुटियां, यदि पूरे बालों को 3 हिस्सों में कीजिए और फिर उसको पीछे डाल दीजिए। मुराद, जैसे कि हम आमतौर पर भी अपने बालों को बांध लेते हैं गर्मी से बचने के लिए। ये बुखारी की रिवायत है 1255 और 1259 और मुस्लिम में 939। फिर इसके बाद आप देखिए कि जरा सा अपने ऊपर लेकर सोचिए, आपके मेरे साथ ये होने वाला है, हम चाहें कि ना चाहें होगा। और दुआ कीजिए कि अल्लाह अच्छा गुस्सल और अच्छा कफन नसीब करे और हमारे पर्दे रख ले। इस हदीस से मालूम हुआ कि औरत को औरतें ही गुस्ल देंगी। याद रहे कि गुस्ले मैयत का तरीका ये है, और गुस्ल के दौरान में इकरा में मैयत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। यानी जैसे एक जिंदा इंसान अपना जिस्म किसी को नहीं दिखाना चाहता, जिस्म पे कोई ऐब है वो बताना नहीं चाहता, तो मैयत का के जिस्म पे कुछ भी अगर हो तो वो दूसरे को नहीं बताएंगे और बड़ी इज्जत से प्यार से उसकी साइड्स पलटेंगे और उसको नरम हाथ लगाएंगे। तफसील ये है, वफात के बाद मैयत का मुंह और आंखें बंद की जाएं। ऐसे हाथ से बंद करते हैं क्योंकि आप देखें जब रूह निकलती है ना तो रूह का पीछा करती है। ये बाज़ आंखों की ये जो पुतली है ब्लैक हिस्सा, ये अक्सर ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि रूह ऊपर जाती है तो मैयत अपनी रूह देख रही होती है और वही जान जाती है। तो इसको हल्के से हाथ से बंद कर देना चाहिए अगर किसी का भी ये वक्त आ जाए तो। बाजू, टांगे और हाथ पांव की उंगलियां भी सीधी कर ले, यानी बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए। उस वक्त जिस्म नरम होता है, बाद में जिस्म सख्त होगा। तो अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा वक्त आपके सामने आए तो उसके बिल्कुल जिस्म को सीधा कर दें। तकिए रखे होते हैं, बाद वह कमर टेढ़ी है क्योंकि थोड़ी देर बाद बॉडी स्टिफ हो जाएगी, तो उसके सारे जिस्म को ना बिल्कुल ऐसे सीधा करके जिस्म से ऐसे रखिए कि वो अपने कफन या ताबूत के अंदर या कब्र में ऑफकोर्स पूरी आ सके। कमीज या बुनियान वगैरह उतार कर चादर से मैयत का बदन ढांप दिया जाए, क्योंकि कपड़े भी बाद में उतारने मुश्किल होते हैं, तो उसको काट दिया जाए। जैसे आसानी से कपड़े उतर सके उतार देने चाहिए। पानी और बेरी के पत्ते उबाल लिए जाएं, फिर नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल किया जाए, यानी ल्यूक वार्म वाटर। नीस पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। लकड़ी का एक तख्ता ऐसी जगह रखा जाए जहां पानी का निकास और गंदगी को ठिकाने लगाना आसान हो। मैयत को इस तख्ते पर लिटाया जाए। नाफ से घुटनों तक की जगह कपड़े से ढांप दी जाए और गुसल देते हुए मैयत की शर्मगाह पर नजर पड़े, ना कपड़े के बगैर इसे हाथ लगे। यानी मैयत के बॉडी को और खासतौर पे प्राइवेट पार्ट्स को खुले हाथों के साथ टच नहीं करना। ऊपर कपड़ा है जो धो भी रहे हैं इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो जिस्म नहीं दिखेगा, बस हाथों से जैसे आज की जुबान में आप कह लीजिए कि ग्लव्स पहन लीजिए और फिर उनको साफ कीजिए। अगर जिस्म जख्मी हो और इस पर पट्टियां बंधी हुई हों तो एहतियात से पट्टियां खोलकर रुई और नीम गर्म पानी से आहिस्ता आहिस्ता जख्म धोए जाएं। हर काम की इब्तदा दाई तरफ से करें, इल्ला ये कि सिर्फ बाई जानिब तवज्जो की मुस्तहिक हो। यानी स्टार्ट करें कोई भी काम तो राइट साइड से करें। हाथ से मैयत का पेट 2 या 3 दफा नाफ की तरफ दबाया जाए, यानी ऐसे स्क्वीज किया जाता है ताकि अंदर की रुकी हुई गंदगी इम्कानी हद तक खारिज हो जाए। बस वह क्या होता है कि वो पूरा नहला के कफन पहनाते हैं तो जिस्म से गंदगी निकलती है। ज़रा कुछ खाया होता है पिया होता है तो बाद में वो जिस्म से निकलता है, तो अगर गुस्ल के बाद होगा तो खामखा एक गंदगी और बदबू का इस्तेमाल होगा। हरतल वसा हल्का हल्का पेट से हिलाएं ताकि जिस्म से गंदगी निकल जाए। फिर बाएं हाथ पर कपड़े का दस्ताना वगैरह जो कि कफन के साथ बनाया जाता है, यानी अक्सर जब आप बाजार से कफन खरीदते हैं तो उसमें ग्लव्स होते हैं, तो कभी ऐसा हो तो समझ जाएं कि ये ग्लव्स आपके इस्तेमाल के लिए हैं, आपने वो पहनकर गुसल देना। फिर मिट्टी के 3 ढेलों, फिर पानी से इसका इस्तंजा करें। अगर जेरे नाफ बालों की सफाई बाकी हो तो कर ली जाए। नाक, दांत, मुंह का खिलाल और कानों में अच्छी तरह गीली रुई फेर कर इनकी अलग से सफाई कर ली जाए ताकि बाद में वुजू के दौरान 3 दफा से ज्यादा न धोना पड़े। बिस्मिल्लाह पढ़कर मैयत को मसनून वुजू कराया जाए। सर का मसा रहने दें, 3 दफा अच्छी तरह सर धोएं। हस्फे ज़रूरत साबुन इस्तेमाल करते हुए पूरा जिस्म 3, 5 या 7 मरतबा अच्छी तरह धोएं। आखिरी दफा नहलाते वक्त पानी में कुछ काफूर मिला लें। काफूर का असर क्या होता है कि कीड़े मकोड़े नहीं आते मैयत के पास, यानी जो कब्र में जो भी छोटी मोटी आलाइशें होती हैं उससे बच जाता है, खुशबू भी होती है। मैयत का कफन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग के 3 सूती कपड़ों में कफन दिया गया। इनमें कुर्ता था ना अमामा। हमारा भी ऐसे ही होगा। ये रिवायत नोट करिएगा, बुखारी 1264। पहले तो ज़रा सा इसको गौर करें। आप में से हो सकता है कि किसी ने आज फर्स्ट टाइम गुसल का तरीका सुना हो। मैं ये सब पढ़ते सुनते वक्त सोच रही थी, कहाँ गया वो बाथटब, कहाँ गए वो कंडीशनर, कहाँ गया वो बॉडी लोशन और बॉडी सॉफ्टनर और जो कुछ भी हमारे बाथरूमों में सामान पड़े होते हैं, कभी सोचा? और जब मैं ये जुमला पढ़ रही थी ना कि उसको तख्ते पे डाल दें, आज रखे हैं अपने बाथरूम में एक तख्ता, तो हमें अपनी असल समझ आ जाएगी। यहाँ तो एक लिमिटेड जगह है ना, हम उतना ही बना पाते हैं जितनी जगह है। आज देखिए तो सही, क्या रैट रेस लग गई, सिर्फ बाथरूम से इस ड्राइंग रूम से बड़े हैं। अंदर जाके बंदा भूल ही जाए कि करने क्या आया था। पूरा स्टोर लगता है, वल्ला ही मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसी जगह कि वो वॉशरूम नहीं, वो टॉयलेट नहीं, वो तो किसी कोने में होगा, वो अंदर जाकर कोई ब्यूटी सैलून लगता है। ऐसी जगह कि जहाँ फरिश्ते भी ना सके, जहाँ शयातीन और जिन्नात रहें, हम अपने पैसे को वहाँ लगाते हैं। क्या हमारा पैसा इसलिए, हमारा पैसा हक के रास्ते में, खैर के रास्ते में लगे तो कुछ हमारे भी बात के लिए भी खैर होगी, और कहाँ हम उसको दुनिया में अपने लिए इन चीज़ों पे ले आते हैं। आप देखिए कि मुसलमान का पैसा घरों पे या ऐसी चीज़ों पे लगे, लेकिन अगर ज़िंदगी का मकसद ये हो जाए कि कमाते इसलिए हैं कि इसके लिए ये और वो, तो आप देखिएगा कि बाद में हमारे काम क्या आएगा। तो आज इन सारी बातों को आपने सोचना, डरने की कोई बात नहीं है। सोचिए उस बिस्तर पे जाने से पहले कब्र को और ऐसे वक्तों को अपने लिए खूबसूरत करना है। तैयारी के साथ चाहिए, बगैर तैयारी के गए तो क्या गए। और ऐसे वक्त में आप देखिए कि हमारी जिंदगियों में से अगर हमारी रूह निकल भी गई तो हमने क्या पाया। और इसको सीखा करें, अपने पास रखें, अपने गुस्ल को देखें, और बाथरूमों में इतने इतना वक्त लगाना और अंदर गाने और पता नहीं क्या कुछ, और अब तो मुसीबत फोन भी साथ है, तो ऐसे वक्तों पे इन सारी चीज़ों को सामने रखना है और इसको बाकायदा सीखिए। अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसी सर्विस मौजूद है उसको लीजिए और उधर से जाकर सीख के आइए। अपनी बेटियों को कहिए कि आपको वो गुसल दें, बेटियां जो दे सकती हैं, क्योंकि अल्लाह करे कि माएँ ही बेटियों के हाथ में जाएं, किसी की बेटी ना मां के हाथ में चली जाए। लेकिन आपके प्यारे जिनको आपने वाकई इन चीज़ों के लिए रखा हुआ है, जिनको दर्द होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप इंशाल्लाह अपने बच्चों को सिखाएं। बापों को चाहिए कि अपने बेटों को सिखाएं, बेटे बापों के साथ सीखें, सुने, आपस में ऐसी वर्कशॉप्स कीजिए, क्योंकि ये गुस्सल तो किसी वक्त भी आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? क्या उस वक्त सीखने जाएंगे? कोई ना मिला तो क्या करेंगे? आज हमें हर कपड़ा सीना आता है, हमें कफन सीना नहीं आता। हम दर्जियों से एक एक कफन भी सिलवा कर अगर अपने पास रख लें तो हो सकता है कि ये हमें आखिरत की याद दिलाए, तो या तो बिल्कुल ही फिर ठंडे हो जाएंगे उसको भी देख देख के, किट्स होके। लेकिन बहरहाल हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। मैयत का शोक, ये हमारे आप से मुतल्लिक है कि मैयत का शोक कब, कैसे, कितने दिन, क्या होगा। हजरत जैनब बिनते जाहिश के भाई फौत हो गए। 3 दिन बाद उन्होंने खुशबू मंगवाई और इसे अपने जिस्म पर लगाया। फिर कहा, मुझे खुशबू की जरूरत नहीं थी, मगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो औरत अल्लाह ताला और कयामत पर ईमान रखती हो, इसके लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज्यादा किसी मैयत पर शोक करे, सिवाय शौहर के जिसका शोक 4 माह 10 दिन है। ये रिवायत बुखारी 1282 है। ठीक है, हमारे यहाँ अमूमन शोक कब तक चलता है? मेरा ख्याल है कि 1 साल तक तो चलता है, जब तक बरसी ना हो जाए। ये पहली ईद है, ईद नहीं करनी, और ये पहली है, शब रात है, फलां है, और 3 दिन, फिर 10 दिन, फिर जुमे रातें, फिर 40वां। इस्लाम में ये नहीं है, ये न जाने कहाँ से आया ये रिचुअल थे। इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा होने की वजह से हिंदू लोग जो तीजा करते थे उसको स्वयं कहने लग गए, और बरसी, वो बरसी को कुछ और कहते थे, हम बरसी कहने लगे। इस्लाम में ऐसी चीज़ें नहीं है। 3 दिन के बाद देखिए कि आपकी जौजा अपने भाई की वफ़ात पे खुशबू लगा रही है, दिल करता है बहन का 4थे दिन खुशबू लगाने को? यही अमल आपकी अपनी एक जौजा ने अपने बाप अबू सुफियान की वफ़ात पे भी किया था, रंग मंगा के लगाया, फिर कहने लगी मुझे रंग की ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह के नबी तो पहले ही जा चुके थे, शौहर नहीं, अब बाप चला गया, कितना सदमा है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए ये लगा रही थी कि मैं आज से अपना शोक खत्म कर रही हूँ। तो इसके बाद अब शोक कहना या सहाबा 3 दिन के बाद कहीं इकट्ठे होने को नौहा करना शुमार करते थे, तो इस नाम पे कोई भी महफिल नहीं सज सकती। सुनना चाहिए कि आप दुआ कीजिए और जाने वाले के जाने से इबरत लेंगे। उमैतिया रजी अल्लाह अन्हा का बेटा फौत हो गया। तीसरे दिन उन्होंने जर्द रंग की खुशबू मंगवाकर बदन पर लगाई और कहा, हमारे लिए शौहर के अलावा किसी और की वफात पर 3 दिन से ज्यादा शोक करना मना है। जी, शौहर पर भी शोक वही है कि जिसमें कोई आराइश नहीं, जिबाइश नहीं है। बाकी आप देखिए कि दुनिया के काम तो चलते हैं। ये बुखारी की रिवायती 1279। मैयत पर रोना, क्या रो सकते हैं? अगर मैयत को देखकर रोना आए और आंसू जारी हों तो मना नहीं, इसलिए कि ये बेख्तियार रोना है जो जायज़ है। नबी सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आँख के रोने और दिल के परेशान होने की वजह से अजाब नहीं करता, बल्कि जुबान के चिल्लाने और वावेला करने की वजह से अजाब करता है, यानी जिसको नौहा और बुरे लफ्ज़ बोल देना। ये बुखारी की रिवायत है 1304 और मुस्लिम 924। यानी मैयत पे ऊंची आवाज़ से बैन नहीं करना चाहिए, ये पसंदीदा नहीं होता। यानी नौहा और मातम और बैन करना ममनू है और बायस अजाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ वो सब्र मोतबर है जो सदमे के शुरू वक्त में हो। इन नमा सब्रु इन द सदमतिल उला, हदीस के ये अल्फाज आते हैं। तो ये रिवायत भी बुखारी की है 1302 और मुस्लिम 926। यानी उस वक्त सब्र कीजिए, बाद में तो वैसे ही सब्र आ ही जाता है। या वावेला करना और बैन करना ये सब्र नहीं है। असल सब्र यह है कि मुसीबत के शुरू में तस्लीम और रजा का मुजाहरा किया जाए, इजहार गम के फितरी तरीके के अलावा और कुछ ना किया जाए। इब्ने मसूद से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो रुखसार पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की पुकार पुकारे, नौहा और वावेला करे। मुराचे थी इससे। ये रिवायत भी बुखारी की है 1294 और मुस्लिम 103 है। फिर इसके बाद आपने फरमाया, मैं उससे बेजार हूँ जो मौत की मुसीबत में सर के बाल नोचे, चिल्लाकर रोए और अपने कपड़े फाड़े। ये रिवायत भी आपके सामने जो है बुखारी की रिवायत है, किताबुल जनाइस और 1296 और मुस्लिम में 104 है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस मोमिन बंदे के लिए मेरे पास बहिश्त के अलावा और कोई बदला नहीं, जिसके प्यारे और महबूब को मैं दुनिया से उठा लूं और वो इसकी मौत पर सब्र करते हुए सवाब की उम्मीद रखे। ये रिवायत है सही बुखारी 6424। तो क्या पता चला इन सब चीज़ों से? सब्र करना चाहिए, किसी किस्म की कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। आपने फरमाया कि जाहिलियत के चार काम ऐसे हैं जिन्हें मेरी उम्मत के लोग नहीं छोड़ेंगे। अपने हसब पर फख्र करना, यानी हम आला हैं, शेख हैं तो कहते हैं शेखों जैसा कोई नहीं, कोई जाट हैं तो कहते हैं जाट जैसा कोई नहीं, ये मुराद है। किसी के नसब पर तान करना, यानी दूसरे को छोटा करना, ताने देना। सितारों के जरिए से पानी तलब करना और नौहा करना। और ये भी फरमाया कि अगर नौहा करने वाली औरत मरने से पहले तौबा न करे तो क्यामत के दिन इस पर गंधक की कमीज, कॉपर और खारिश का कुर्ता होगा। यानी आप देखिए, ऐसी औरतें वैसे भी उस वक्त भी देखने में अजीब लगती है ना, तो मुराद है कि जैसा उसने दुनिया में रवैया किया वैसा ही उसको वहां भी दिखेगा। ये रिवायत मुस्लिम की है 934। फिर आप देखिए कि इन सारी चीज़ों में से जो चीज़ आपके मेरे लिए है, पहले से तैयार हो। जब भी आप किसी चीज़ के लिए पहले से तैयार होते हैं तो आप फिर ऐसी हरकतें नहीं करते। नबी सल्लम के बेटे इब्राहिम बेबी थे, अभी छोटे से बच्चे थे, उनका इंतकाल हुआ। जब हालत निज़ाम में थे तो आपने इनको उठाया और फरमाया, आंख आंसू बहा रही है, दिल गमगीन है, मगर इसके बावजूद हम कुछ नहीं कहेंगे सिवाय इस बात के जिससे हमारा रब राजी हो, और ए इब्राहिम हम तेरी जुदाई के सबब गमगीन हैं। यानी आपकी जुबान पे गम था लेकिन आपने गलत बात नहीं की, दिल में दुख होता है जुबान पे नहीं है। ये बुखारी की रिवायत 1303 और मुस्लिम 2315 है। फिर इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लम का नवासा यानी ग्रैंड सन फौत हुआ, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत साद बिन उबादा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल ये क्या है, यानी आप रो रहे हैं? मुराद ये तो कि आप तो इतने बड़े इंसान हैं। तो आपने फरमाया, ये वो रहमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में पैदा की है। अल्लाह अपने बंदों में से रहमत करने वालों पर ही रहमत करता है। यानी आंखों से आंसू आना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। बुखारी की रिवायत 1284 और मुस्लिम 923 है। इसी तरह एक औरत का अगर बच्चा फौत हो जाए तो उसकी क्या कैफियत है? आपने फरमाया, जिस औरत के 3 बच्चे फौत हो जाएं तो वह इसके लिए जहन्नम की आग से आड़ बनेंगे। एक औरत ने पूछा, अगर 2 बच्चे फौत हो जाएं? तो आपने फरमाया, 2 बच्चे भी। अबू हुरैरा की रिवायत में इससे मुराद वो बच्चे हैं जो भी बालिग ना हुए हों। यानी छोटा बेबी फौत हो जाता है किसी का या बच्चा, तो उस पर भी बहुत अजर है। बुखारी की रिवायत 1249 और 1250 और मुस्लिम 2633 2634 है। और रिवायत है कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला इन बचपन में फौत होने वाले बच्चों पर अपनी रहमत और फजल के सबब इनके मुसलमान वालदैन को जन्नत में दाखिल करेगा, यानी ये बच्चे जन्नत में ले जाने का जरिया बनेंगे। ये रिवायत बुखारी की 1248 है। तो अल्लाह ना करे किसी का बच्चा जाए, बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन ये सदमा आ जाए तो इसको बर्दाश्त करना है। आखिरी चीज आज के सेशन की जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, किसी के घर जब जाते हैं ताज़ियत करने तो क्या कहें। पहली तो बात है, हमारे यहाँ लफ्ज अफसोस बोला जाता है, अफसोस नहीं है। अल्लाह के फैसलों पे कोई अफसोस नहीं है, उसको कबूल कीजिए। ताज़ियत की दुआ के मसनून अल्फाज, ताज़ियत का मतलब वादे अजर की बिना पर सब्र की तलकीन और तरगीब देना, और मैयत और मुसीबत के मारे को दुआ देना है। अल्लाह के नबी ने अपने नवासे के मुतल्लिक जो हालत नज़ा में थे अपनी बेटी को ये कलिमात ताज़ियत भेजे। आप सब भी आज पढ़ लीजिए, जब भी किसी के घर मैयत हो ये कह सकते हैं कि हम ताज़ियत के लिए गए हैं, ठीक है, लेकिन अफसोस का लफ्ज ना बोलिए। क्या है लफ्ज देखिएगा, इन्ना लिल्लाही मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बियजलिम मुसम्मा। यकीनन अल्लाह का माल है जो उसने ले लिया और उसी का है जो उसने दे रखा है, इसके यहाँ हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। यानी जो चला गया वो तो गया, अभी भी जो चीज़ें पास है उसकी भी फिक्र करो, वो भी चली जाएंगी, ये मुराद है। फिर आपने पैगाम ले जाने वाले से कहा, इसे हुक्म देना कि सब्र करके इसके अजर व सवाब की उम्मीद रखे। क्या पता चला कि इस दुआ के बाद लवाहकीन को सब्र और सवाब की उम्मीद रखने की तलकीन करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उसने हमें मुसलमान बनाया है तो हम इस्लाम के हर रिचुअल से बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। ये था हमारा आज का सबक। सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।